ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी चिंताएं? छोटी थोड़ी हायर, थोड़ी नीचे प्रैक्टिकल।
घर जाना तो अपने आगे चले जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में चिंताएं हैं, अधिगन होंगे जो कि आपसी परिवार में एडजस्टमेंट की चिंता, चल पाएंगे परिवार में, नहीं चल पाएंगे,
चल पाएंगे नहीं
परिवार,
भय जैसे रखते
हैं
ना,
डर विनाश छोड़।
फिर चिंता होती है मुरली याद नहीं रहती है, ये भी चिंता रहती है।
तो बड़ी सत्व प्रधान चिंता है, बीमारी ये है प्रैक्टिकल। बीमार अगर पड़ गए तो क्या होगा, कौन देखेगा, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। और ऐसी अगर कोई बीमारी होगी जिसका इलाज ही लाइलाज, सबसे बड़ी चिंता है बीमारी की चिंता। और चिमन भाई, ब्राह्मण संसार में कौन सी चिंता है? कोई भी चिंता नहीं, सबसे अच्छी अवस्था है, चिंता मुक्त,
सबको चिंता से मुक्त करने वाले हैं।
ये तो संसारी झमेलों का है, बाबा ने कहा ना वरदान में, झमेले तो अंत तक आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और चिंता
कोई आवश्यक बात है, कोई आवश्यकता है
नहीं मिलता है बुढ़ापा, ओल्ड एज, संभाल कौन करेगा उसकी चिंता। और मानव कौन सी चिंता है ब्राह्मणों को?
खुद के पार्ट को ना जानने की चिंता, अगर हमें खुद का भी पार्ट पता
नहीं चला अभी तक क्यों आए हैं इधर,
औरों का भी पता हो जाए कि इनका ये पार्ट है आगे चल के, तो शायद सारी चिंताएं खत्म हो जाए। अनिश्चितता की चिंता है,
भविष्य आज जैसे बोला ना, भविष्य स्पष्ट नहीं,
तो फिर
सारी मुरली इसी बात के ऊपर है आज, कि भविष्य श्रेष्ठ भविष्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता, आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन मार्क है, पेपर के रूप में आ रहा है, आगे क्या होगा। स्नेह न मिलना, सहयोग न मिलना, चिंता है ना, कोई तंग कर रहा है, तो तंग करते हैं ना लोग, करते हैं ना दिन, व्यर्थ संकल्प की चिंता बड़ी है, हाईएस्ट चिंता, थोड़ी नीचे कोई जबरदस्ती तंग कर रहा है, चिंता होती है वही हमारा बीमार है, हम बीमार और दूसरे बीमार, तो चिंता दूसरे लौकिक संबंधी या फिर और भी कोई, तभी भी चिंता होती है। और बीमारी, बुढ़ापा, असहयोग,
सबसे ज्यादा तो बीमारी का ही ज्यादा,
सबसे ज्यादा बीमारी,
बीमारी का ही डर रहता है, लेकिन चिंता बहुत ज्यादा रहती है। दुनिया में देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो,
बीमारी में तो चिंता करने से पड़ती है,
नहीं वो कोई वो नहीं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, वो चिंता,
चिंता की बात,
सहयोग नहीं है, सहारा नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, यहाँ ज्यादा इच्छा है, एक्सपेक्टेशन इधर ज्यादा है, उधर नहीं है इतनी,
उधर तो थोड़े से लोग होते
हैं। कोई एक युगल थे ना गुजरात के, वो एक माता जी कहते थी कि मैं जब शरीर छोड़ू तो तुरंत शरीर छोड़ दू, पर वो यही बात बार 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 कहती रहती थी, पर वो जब बीमार पड़ी तो उसका बहुत लंबा चला, 6-7 महीना तक चला, वो सबकी सेवाएं उसको लेनी पड़ी। उसके युगल थे वो कहते थे, कुछ कहते नहीं थे, शांत थे, उसने तुरंत शरीर छोड़ा। एक है कि शरीर छोड़ना और कई आत्माओं से सेवा लेना, एक है ऐसा शरीर छोड़ना कुछ नहीं, एक सेकंड में। वो एक सेंटर का कोई भाई, कौन सा, जयपुर सेंटर, सेंटर पे गया सुबह 6 बजे, बाबा के कमरे में बैठा ऊपर। ये सबसे अच्छी मेथड है, पर ये हमारे हाथ में नहीं। पर हम तैयारी तो कर सकते हैं छोड़ने। विवेकानंद के जीवन में भी दिखाते हैं कि विवेकानंद वो जब शरीर छोड़ने वाला था, उसके कुछ 10-15 दिन पहले से वो कैलेंडर देख रहा है, जैसे सोच रहा है कौन से दिन जाओ, ढूंढ रहा है कौन सी तारीख को जाओ, और योग में बैठा है, आत्मा चली गई निकल के, तपस्या में। मना मेडिकली तो कारण है कि कोई ब्लीड हो गया, नाक से खून आ गया मेडिकल रीति से, पर उसको जैसे पता था, उसने लिखा कि मेरा कार्य पूरा हुआ। उसके जो भी लेटर थे 1902 के, जो यहाँ वहाँ लिखे हुए हैं, उस सब में ऐसा बता रहा है कि जैसे वो पूर्ण हो गया, कि कार्य पूर्ण होगा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो, अभी तुम इसको देख लो, तुम उसको देख लो, अभी मैं इस सब से मुक्त हूँ। तैयारी कर रहा है और छोड़ दिया शरीर, बहुत कम होता है। महान आत्माओं का ऐसे ही होता है, जो भी महान आत्मा है उनको शायद पता चल जाता है कि वो जाने वाले हैं। बहुत सारी आत्माओं को पता चल जाता है कि समय हो गया, ज्ञानियों को भी पता पड़ता है, सिक्स्थ सेंस यहाँ पे भी पता पड़ता है। सबसे बेस्ट है कि इस तरह शरीर छोड़े तुरंत, पर वो हमारे हाथ में नहीं, कोई बात नहीं, लंबा बार बार शरीर छोड़ने का अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर से गई, शरीर से जाना और शरीर में आना, ये सबसे मेन अभ्यास है।
जाने की
प्रैक्टिस करें, आना भी है ना बाद में। मैं यहाँ से निकल कर गई और अभी अभी आई हूँ, मैं यहाँ से गई और आई, मैं आत्मा। एक ये भी योग का अभ्यास है कि मैं आत्मा इस तन से पहले, इस शरीर से पहले किसी और शरीर में थी, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी साहूकार, कभी गरीब, कभी कुछ कभी कुछ, पीछे पीछे जाते जाओ, पीछे 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 पीछे, और फिर देवता, उल्टा उल्टी बाजूली। इस तन से पहले मैं उस तन में थी, उस तन से पहले मैं उस तन में थी, ये भी एक आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है ना। यही तो युक्ति बताई आज, युक्ति कौन सी बताई, ज्योति स्वरूप में स्थित होना, निमित्त विघ्न जो आ रहे हैं। इधर नागेश भाई, विघ्न जो आ रहे हैं उससे छूटने की साधन जो बताया वो यही बताया ना, इसमें स्थित होना, तो वही नहीं होता है ना, परिस्थिति समस्या झमेले विघ्न, उस समय स्थित होना, पत्थर नहीं तोड़ना। पत्थर तोड़ने की बात कितनी बार कही बाबा ने, शायद एक हफ्ते में, लोगन में, वरदान में, पत्थर तोड़ना, झमेला, समस्या, विघ्न, ये सारे पत्थर है, समस्या, पहाड़ है, पत्थर भी है, इनको वो हिलेंगे भी नहीं, हटेंगे भी नहीं, उनको तोड़ो भी नहीं। जंप, जंप लगाना अर्थात मन बुद्धि से किनारा कर लो झमेले को, वरदान में बोला ना, साक्षी हो जाओ उस समय। ओम शांति। तो आज क्या बोला मुरली में, आखिरी से चालू करें, टीचर से मुलाकात, बोलो चिमन भाई क्या था आज, टीचर से मुलाकात, टीचर्स का कर्तव्य है
याद और
याद और कौन सी टीचर है ये? मध्य प्रदेश की टीचर है, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। और क्या बोला उनको? एक मत एक रस, एक ही कार्य में अगर लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? दो बातें हो जाएगी, नहीं प्रफुल्लित रहेंगे और धर्मी फलदायक हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को वरदान है बाबा ने कहा फलता फूलता रहने का। तो एक रस एक मत और एक ही कार्य में लगे रहेंगे, खुद भी प्रफुल्लित और धरनी भी फलदायक। एक रस एक मत, एक रस अर्थात सर्व रस एक से, एक में बुद्धि। लास्ट संडे के लास्ट संडे में था ना, एक को देखो और एक को ही सुनो। मछली को भी नहीं देखना है, विस्तार को देखना ही नहीं है तुमको, आंख को भी नहीं देखना है, केवल बिंदी को देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। एक रस, तो एकाग्रता भी तभी आएगी, और एकाग्रता जब होगी तभी विकर्म विनाश होंगे, तभी योग अच्छा होगा। अगर बुद्धि कई जगह पे है, कई आत्माओं में है, कई लोगों से कॉन्टेक्ट है, डीप कॉन्टेक्ट पर्सनल, तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो एक रस एक मत, एक ही कार्य में लगे रहेंगे तो बाबा ने कहा प्रफुल्लित रहेंगे और धरनी फलदायक होगी। और क्या बोला? उदाहरण दिया ना एक, साइंस के क्या करते साधन? तीव्र गति से बीज और फल तुरंत। तो तुम भी यहाँ क्या करो? तीव्र गति से प्रत्यक्षता का फल, सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता का फल निकालो। और फिर बोला जैसी निमित्त आत्माएं होगी वैसा ही वाइब्रेशन फैलेगा। निमित्त आत्मा सहयोगी है तो सब सहयोगी बनेंगे, वो खुद उलझन में है तो सब उलझन में आ जाएंगे, स्वयं निर्विघ्न है तो वातावरण। जिस सेंटर पर जितनी ज्यादा प्यूरिटी है वहां पर उतना ज्यादा आकर्षण है, कौन सेंटर कितना बड़ा है उससे लेना देना नहीं है। वहां रहने वाली जो आत्माएं हैं, एक मत कितना है, एक रस कितना है और पावर ऑफ प्यूरिटी कितनी है, क्योंकि आत्माएं जो खींचकर आएगी देवी देवता धर्म की, वो किसको देखकर आएगी? प्यूरिटी को खींचेगी, प्यूरिटी खींचेगी उन आत्माओं को, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं, केवल एक प्यूरिटी ही नई आत्माओं को खींचने वाली पावर है पवित्रता की। अगर उसमें ही गड़बड़ है तो वहां वृद्धि नहीं हो सकती, होगी भी तो भी क्वालिटी उसकी कुछ इतनी नहीं रहेगी। और क्या बोला? जैसे वो साइंस का बल है, यहाँ साइलेंस का बल है, तो यहाँ साइलेंस के बल से प्रत्यक्षता सहज और तीव्र गति से होगी, वहाँ पे वो बीज और फल सहज निकालता है, यहाँ साइलेंस का बल है। साइलेंस का बल या योग का बल कहो, पवित्रता का बल कहो, सब एक ही बात है। तो टीचर्स बहनों को बाबा क्या कहा कि, और एक लास्ट लाइन है, निर्विघ्न और एक की लगन में मगन तो सफलता मिलेगी। तो वहां पे तीन बातें हैं, सबसे पहले एक मत एक रस और निर्विघ्न एक की लगन में मगन, ऐसी अगर अवस्था है तो सफलता मिलेगी। ऐसी अगर अवस्था है तो खुद प्रफुल्लित रहेंगे और धरनी फलदायक होगी। जैसी निमित्त आत्मा है वैसा ही वाइब्रेशन, खुद सहयोगी तो दूसरे सहयोगी, खुद उलझन में तो दूसरे उलझन में। ये था बहनों से मिला। उसके बाद राजस्थान, क्या बोला राजस्थान को विठल भाई? महान तीर्थ स्थान है राजस्थान को, सेवा का साधन गिफ्ट के रूप में मिला है। कौन सा सेवा का साधन? मधुबन सेवा का साधन है, इसका लाभ उठाओ बाबा ने कहा, सेवा के साधन का लाभ उठाओ। सेवा का साधन आकर्षित करेगा, केवल ये सेवा का साधन आकर्षित नहीं करेगा, आसपास के जो भी है एरिया वो भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, इसके आसपास जो भी है। तो राजस्थान को बाप दादा का क्या है? वरदान है, दोनों का वरदान है। विशेष नजर है, ये भी कहा। और क्या बोला, राजस्थान वाले अपनी महिमा नहीं जानते, जितना बाप राजस्थान वालों की महिमा जानते उतने राजस्थान में रहने वाले अपनी महिमा नहीं जानते। हमेशा बाबा ये इसके लिए कहते हैं कि तुम जितना जितना बाप तुमको जानता है, तुम महानता, तुम्हारी महानता को जितना, आज भी बोला ना योग्यता और विशेषता, बाप के सामने तुम बच्चों की योग्यता और विशेषता स्पष्ट है, तुम्हारे सामने भी वो उतनी स्पष्ट हो, योग्यता और विशेषता। तो बाप के सामने राजस्थान की महिमा क्या है, स्पष्ट है, पर बच्चों के सामने नहीं है, राजस्थान में रहने वालों के पास इतनी स्पष्ट नहीं। और क्या बोला राजस्थान वालों को, अच्छी बात बोली, एक धारणा वाली एक पॉइंट, परोपकारी, सो विश्व उपकारी, परोपकारी अर्थात परोपकारी अर्थात
सदा खिले हुए,
सदा खिले हुए, सदा खिले हुए, परोपकारी अर्थात
दूसरों की कमी कमजोरियों का भी वर्णन करने वाले नहीं,
सदा सर्व को गुणमूर्त देखने वाले, अगर कमजोरी दिखती है तो
वर्णन नहीं करेंगे,
शुभ भावना,
कांटे को भी कल्याणकारी बनाएंगे।
हाँ, दूसरा पॉइंट मानस को पता है सर, नौ पॉइंट है, बोलो पता है आपको,
गाली देने वाले को भी गले
लगेंगे, गाली देने वालों को लिखा है ना उधर, अपमान करता है तो तीन बातें लिखी है उधर, फूल, खुशियां और शुभकामनाओं की वर्षा करो,
ये परोपकार,
ये है परोपकार, फूलों की वर्षा चलो वो छोड़ दो, खुशी शुभकामना भावना तो दे सकते हैं, तीन चीजें है वहां पर। तो परोपकारी अर्थात दूसरों को गुणमूर्त देखना, अगर अवगुण दिखते हैं तो शुभ भावना, शुभ कामना,
शक्ति देना,
फिर उनको बदलना। तीसरा परोपकारी अर्थात
दाता
बनना, देने वाले, जो खुद जो भी खजाने हैं उसको देना, कोई भी आए तो खाली हाथ ना जाए, परोपकारी, परोपकारी अर्थात माला माल बनाने वाला, परोपकारी अर्थात कोई भी बेगमपुर के बादशाह संकल्प में भी कोई गम ना, परोपकारी अर्थात, और भी कुछ है, एक दो तीन गाली देने वाले को गले लगा। तो बाबा ने कहा परोपकारी तो विश्व उपकारी बने, राजस्थान वालों के लिए बाबा कितना पॉजिटिव है कि उसमें कहा है ना कि एक समय आएगा, बाप जानते हैं क्या होने वाला है, कि यहाँ की संख्या की लिस्ट सबसे ज्यादा होगी, फल अवश्य निकलेगा, बाबा इसकी विशेषता जानते हैं, इसके लिए तो यहाँ है, इस भूमि की विशेषता जानते हैं, तो परोपकारी बना। और क्या बोला राजस्थान का, और भी कुछ बोला,
सबसे पहले बाप दादा की नजर,
सबसे पहली नजर भी यहाँ पड़ी,
दोनों
की वरदान है, अभी वरदान है तो फल तो अवश्य निकलेगा, बाबा ने कहा। ये हो गया राजस्थान, पार्टियों से मुलाकात, क्या कहा पार्टियों से मुलाकात में, अरे बोलो ना माता जी, पार्टियों से मुलाकात पढ़ी नहीं,
महानों का महीनर,
तुम सब कौन हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो संसार की, तुम्हारे सामने संसार की आत्मा क्या है, तुच्छ,
प्रेसिडेंट
जैसे कुछ है ही नहीं, इस संसार की सबसे महान आत्माएं हो तुम, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, तुम्हारे सामने संसार की आत्माएं जैसे कुछ है ही नहीं, तुम्हारे प्राप्तियों के आगे उनका तो जैसे कुछ भी नहीं है। अगर तुमसे प्रेसिडेंट आकर कहे कि ब्रह्मा कुमार के बदले प्रेसिडेंट बन जाओ तो क्या कहोगे, बनोगे, बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि वो है अल्पकाल का मर्तबा, पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा, और ये है सदाकाल का मर्तबा, 21 जन्म पूरा ही।
अपना स्मृति अगर रहे प्राप्ति की और श्रेष्ठता की
सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे तो सर्व अनुभव से संपन्न बनेंगे, सर्व प्राप्तियों से अनुभव से संपन्न बनेंगे। और वो है फिर भी क्या है, वो तो बेताज बादशाह भी नहीं है, बेताज भी नहीं है। बादशाह में पावर होती है, शक्ति होती है, तो वो तो बेताज बादशाह भी नहीं है। तो हम जो है वो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं, सबसे ऊंचा है। तुम थोड़े में संतुष्ट होने वाले नहीं हो, राजी होने वाले नहीं हो। जो थोड़े में राजी होते हैं वो कौन है? भक्त। तुम अधिकारी हो, आजकल तो सब अधिकार मांगते हैं, यहाँ तक कि नौकर भी अपना अधिकार मांगता है। बाप अधिकार देने आया है तो बाप से अधिकार लो, बाप अधिकार देने आए। और संपूर्ण अधिकारी अर्थात इसकी भी परिभाषा दी है बाबा ने, जब भक्तपन का अंश भी ना रहे तब कहेंगे संपूर्ण अधिकारी। तो अधिकारी बनना है, भक्त नहीं।
भक्तपन का अंश,
भक्तिपन का अंश बाबा ने वो बताया ना, जब माया के वशीभूत हो जाते हैं तो क्या क्या कहते थे, एक है बाप और बच्चों का मिलन, एक है भक्त और भगवान का मिलन, कृपा करो आशीर्वाद। अच्छा शिव बाबा की भक्ति के क्या क्या उदाहरण है, ब्राह्मण जो करते हैं शिव बाबा की भक्ति करते हैं ना बच्चे, बाबा व्यर्थ संकल्प नहीं आओ, तो माया को नहीं भेजो, कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो, बारिश को रोक दो, हम पहुंच जाए तब बारिश आ जाए।
क्या कहते हैं, हम ना पहुंचे तब तक ट्रेन,
ट्रेन तब तक वहाँ रोक देना, हम खड़ी रहे। और क्या क्या, बीमारी आ गए तो बाबा जल्दी ठीक कर दो, सहयोग। अरे तुम अधिकारी हो,
लेना क्या, माना तो अधिकारी हो,
मांगना है तुमको। मांगने वाले कभी संपन्न बन नहीं सकते, इच्छा नहीं रखनी है, कल का वरदान था इच्छा मात्र में विद्या, कुछ मांगना ही नहीं है तुमको इधर। अधिकार, अधिकार बाबा ने कहा ना, अगर बाप की जो विशेष रचना है स्वर्ग, उससे अगर कोई वंचित रह जाए तो उसको क्या कहेंगे। जैसे उदाहरण लौकिक में कोई बाप की संपत्ति से ही वंचित रह जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या प्राप्ति होगी। तुम तो राजा हो के राजा बनने वाले, उसके सामने ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है।
हम बच्चों का अच्छा महत्व बताया,
हमारा ब्रह्मा कुमार या कुमारी बनना इस संसार का सबसे बड़ा टाइटल है।
टाइटल क्या, पद ही बहुत बड़ा है,
सबसे बड़ा यही पद, सबसे इसके ऊपर और कोई पद है ही नहीं। सही, इसके ऊपर कोई पद है क्या संसार में, सारे लगा दो लाइन से।
तो चिंता की दुआ की रही,
वही तो चिंता है कि हम जानते नहीं अपने पद को और सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा है। वो दादी जी का उदाहरण है ना, वो यूनिवर्सिटी से दादी को डॉक्टरेट मिला था ना, तो दादी ने किसी ने अनुभव में सुनाया था, वो पहन लिया और बाबा के कब की अव्यक्त बाबा था सबकी बात है, तो बाबा के सामने गई, बाबा मुझे खुशी हुई ना उसको डॉक्टरेट मिला डॉक्टर, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी से बड़ा कोई पद है क्या, वो निकाल दिया। संसार के डॉक्टर जो भी है कुछ, ये जो पद है इससे बड़ा और कोई पद है ही नहीं संसार। इसके लिए कोई तुमको प्रेसिडेंट भी कहे कि ब्रह्मा कुमार के बदले प्रेसिडेंट बन जाओ तो मानोगे, नहीं मानोगे ना, बोला ना ऐसे बाबा ने। फिर हाँ शिव बाबा की भक्ति के उदाहरण, नंद कुमार भाई शिव बाबा की भक्ति करते हैं ना बच्चे, माया की नहीं आने दो, कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो, बारिश को रोक दो, कल सुबह जल्दी उठा देना। बोलते हैं ना, भक्ति है कि नहीं, और क्या बोलते, ये किया इसमें सफलता मिलनी चाहिए, मेगा प्रोग्राम हो रहा है, बारिश बिल्कुल नहीं आनी चाहिए,
सेंटर मिल जाए,
एक सेंटर जगह अच्छी मिल जाए, कोई सहयोगी आ जाए, कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाए, अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे पैसे वाले आ गए,
डायरेक्टली अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए क्लास में,
अच्छे अच्छे पढ़ने वाले।
प्रकृति के लिए भी बहुत बाबा से मांगते हैं ना। मुंबई में मेगा प्रोग्राम हुआ था ना एक बार 2008-09 में हुआ था मेगा प्रोग्राम मुंबई में। कंटिन्यूअस बारिश चालू थी, सब लोग योग में बैठे थे, इधर भी योग उधर भी योग सब जगह योग। सुबह से थोड़ी थोड़ी चालू थी पर जब प्रोग्राम चालू हुआ तो फुल बारिश और जो लोग थे खाली बीके लोग बचे, बाकी प्रोग्राम तो बाहर वालों के लिए, बाहर वाले तो आएंगे नहीं, खाली जो बीके पूरे महाराष्ट्र से आए हुए छाता ले लेके खड़े थे और जोर जोर से योग चालू था कि बारिश बिल्कुल रुक जाए। रुकने का तो क्या, और तेज हो गई। क्यों रोकनी है बारिश, आने दो प्रकृति को, प्रकृति को इंटरफियर नहीं करो। तुमने प्रकृति के उस रूप को एंजॉय किया ना तो इस रूप को भी एंजॉय करो। क्यों उसकी कंप्लेंट करनी है कि धूप बहुत है, ठंड बहुत है या बारिश बहुत है। तीन ही सीजन है इधर, एक दो तीन, वो है तो वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए। क्यों, जो है उसको स्वीकार करो, बारिश है बारिश है, ठीक है। क्यों हम चाहे संकल्प करें उसको रोकने का, जरूरी है वो किसानों के लिए जरूरी है।
लिए तो मुश्किल हो जाएगी,
हमको तो यहाँ से वहां तक जाना है, नीचे तक बारिश रोक दो, ये हमारे संकल्प है। इतना स्वार्थ है उसमें, हमें विश्व कल्याण करी, स्वार्थ है उसमें कि बारिश रुक जाए, ठंड थोड़ी कम हो जाए। क्यों करना है प्रकृति, ये सब भक्ति है। अगर करना है तो हाँ, फिर उसका फिर दूसरा है, ऑर्डर करो फिर उसको, अधिकारी बनकर। बारिश आ रही ना, रुक जाए, शिव बाबा को नहीं लाओ उसमें, हमारे संकल्प से, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उसको रोक। जब तक मैं नहीं जाऊंगा ट्रेन नहीं निकली, वो हो सकता है। वो तो है, फिर इधर ही आएगा वो, फिर प्रयोग है सबकॉन्शियस माइंड का, वो तो अवचेतन मन की शक्तियां है, उससे हो सकता है। क्योंकि उससे जो संकल्प करोगे वो नहीं है, क्योंकि हमारे संकल्प प्रकृति में जा रहे हैं, संकल्प और प्रकृति की रिएक्शन हो रही है और उससे घटनाओं का निर्माण हो रहा है। हम जो सोच रहा है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, वो और गरीब बनता जाता है। और जो सोचता है कि मैं धनवान हूँ, वो आप ही धनवान बन जाते हैं। ये सब, ये सारे जो प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल, जो सोचोगे वो होगा। तो फरिश्ता बनने की विधि ये नहीं है मुझे फरिश्ता बनना है, मैं फरिश्ता हूँ।
बाबा ने भी यही कहा,
बाबा जो भी बता रहे हैं, ये सारा जो है ना विदेश की साइकोलॉजिकल की जितनी किताबें हैं उसका जितना डीप स्टडी करो पता चलता है, बाबा जो सुना रहा है ना वो उनके कंक्लूजन, और ये बाबा जो सुना रहे वही है। बाबा जिस प्रकार से सुना रहे हैं ना वही सुना रहे, वही उनके भी कंक्लूजन वही आ रहे।
बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कोई है या नहीं है फरिश्ता, लेकिन फरिश्ता देखो
सबको देवकुल की महान आत्मा है। देखो
काले कोले जैसे
कोई भी हो, सबको देवकुल की महान आत्मा है। देखो वो जो अज्ञानी है उनको भी देवकुल की महान आत्मा है। देखो तो वो आ जाएंगे अगर होगा उनमें से कुल। यहाँ तक बोला कहाँ थे हम,
भक्ति
भगत। हाँ, और शिव बाबा की भक्ति, संजय भाई शिव बाबा की भक्ति, बाबा 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 मेरे बाबा के नारे लगाना जोर जोर से। बाबा ने बोला ये दिल का सौदा है, मुंह का नहीं।
बाबा ने
बोला तुम बोला सब भक्त हो, यहाँ तक बोल के रखा है। मांगना जहाँ है वो भक्ति है, जहाँ मांगना है तुमको तुम्हारे विकर्म विनाश करना, एक बाबा के सामने अपना सब कुछ सुनाना, एक प्रकार से वो भी भक्ति। क्या नहीं है, संपूर्ण ज्ञान में भक्ति नहीं है। संपूर्ण ज्ञान अर्थात आत्मा समझकर बाप को याद करना, वो परमधाम में स्थित होने वाला जो योग है ना ज्वालामुखी योग, वो छोड़ के सकाश देना, ये पांच स्वरूप छोड़ के बाकी मैक्सिमम जो है सब भक्ति है। जो कुछ देहाभिमान वश जो कुछ करते हो सब भक्ति, देहाभिमान में जो कुछ करते हो सब कुछ भक्ति है।
पूरा ज्ञानी नहीं है तो भक्ति,
पूरा ज्ञानी नहीं है
तो भक्ति ही है।
हाँ, मैंने बता दिया था।
तो भक्त भक्तपन का अंश ना रहे इसको कहते संपूर्ण अधिकारी। बाप अधिकार देने आया है तो बाप से अधिकार लो, परंतु जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो इस तरह के सारे संकल्प करते हो, ये कर दो वो कर दो ऐसा कर दो ऐसा नहीं वैसा हो जाए, माया को हमारे साथ पास नहीं भेजो, ये सब भक्ति है। तो ये था पार्टियों से मुलाकात। अभी मेन मुरली
विघ्न
कितने सोमान है, कितने 16-17 सोमान है, 17 सोमान है, बहुत सारे सोमान है। तो कौन किसको देख रहा है, संजय भाई बाप दादा किसको देख रहे, लाडले श्रेष्ठ सिरताज अनमोल रतन अमोलक रतन अमोलक अर्थात अनमोल एक ही शब्द है। गले का हार सितारा सर का सितारा दिल तख्त नशीन बाप के साथ पूजनीय भक्तों के इष्टदेव नैनों के नैनों में सितारा मस्तक मणि छोड़ दिया
वो भी आगे आगे।
बाप के साथ पूज्य भी बताया।
हाँ बाप के साथ पूज्य भक्तों के इष्ट ये सारे समान है हमारे। तो बाबा हमको इस नजर से देखते हैं, बाबा हर बाबा के सामने हर बच्चे की विशेषता और योग्यता स्पष्ट है, परंतु बच्चों के सामने नहीं, उसके सामने स्पष्ट है। बाप दादा ऐसे अमोलक रत्नों के सदैव साथ है, ऐसे जो रत्न है उनके सदैव साथ है, ऐसे जो अमोल अनमोल रत्न है वो सदैव सहयोगी है बाप दादा के, ऐसे सहयोगी बच्चे स्मृति स्वरूप बच्चे बाप दादा के सहयोगी है, ऐसे जो स्मृति स्वरूप है। फिर आगे आगे फिर विघ्नों के बारे में तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी पुरुषार्थी से पुरुषार्थहीन नहीं ये गिरना कौन सा है, तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी। पुरुषार्थी अर्थात सुबह अमृत वेला उठे फिर योग किया फिर मुरली सुनी फिर ट्रैफिक कंट्रोल किया दिन भर फिर शाम का योग किया फिर गुड नाइट करके सो गए, ये कहा जाता है पुरुषार्थ। ये है पुरुषार्थ, इसके नीचे है जो भी है पुरुषार्थहीन। हमको बाबा कह रहे तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ ये जो है इसका दो गुना तीन गुना ज्यादा जो भी है वो है तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो ये है सब कर रहे
मुरली में पढ़ा,
रेगुलर अमृत वेला करना और रेगुलर मुरली सुनना पढ़ना मनन चिंतन ये सब पुरुषार्थ है।
तीव्र पुरुषार्थी केवल 108 है बाबा ने कहा, मुरली में तीव्र पुरुषार्थी केवल 108।
तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बहुत बार दी है बाबा ने यहाँ वहाँ मुरलियों में, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक मुरली में कहा है एक गलती जो आज की उसको दोबारा रिपीट न करना, ये है तीव्र पुरुषार्थ।
समय को बर्बाद न करना
तीव्र पुरुषार्थ हाईएस्ट बहुत ऊंची स्टेज है तीव्र पुरुषार्थ।
जो सोचा वही किया,
निरंतर अटेंशन। उस दिन मुरली चली ना भक्त लोग लिखते हैं बाबा ने कहा ना फिर टोटल निकालो अपना एकाग्रता एकांत में बैठते और माला जपते तो तुमको भी सारे दिन भर में बीच बीच में याद करते रहना और फिर टोटल निकालो कितना याद किया सदा एक बार नहीं सदा कई ऐसा है ना हम जो यहाँ आए थे तुम्हारे जैसे ही पुरुषार्थ करते थे बहुत अच्छे पुरुषार्थ अरे बहुत पुरुषार्थ सुबह 2 बजे हो गए अभी क्या हुआ पहले हम बहुत अच्छा करते थे अरे अभी का बोलो अभी उम्र हो गई पुरुषार्थ का ग्राफ कैसा है ऐसा चालू हुआ जब आए ज्ञान में ऐसे चालू हुआ पूरा सीधा 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 ऐसा एकदम ऊपर और फिर बाद में एक प्लेट्यू फेज आ गया बस ऐसे ही चल रहा है और बीच में थोड़ा डिप भी हो गया फिर और थोड़ा लो लेवल पे चल रहा है अभी ये ग्राफ है पुरुषार्थ और इसमें संतुष्ट है कि बस ये इतना ही इसको मेंटेन करना है इसको बढ़ाने का संकल्प नहीं है
ज्यादा बढ़ाते तबीयत खराब
बहुत सारे कारण है बढ़ाना नहीं है बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं कि ये अभी नहीं होता, वो पहले करते थे अभी नहीं होता, पहले ये करते थे पहले वो करते थे पहले ऐसा करते थे पर अभी तबीयत उम्र और बहुत से कारण। तो ये फॉल कौन सा है बाबा, कौन सी बात कर रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी होने के कारण बता रहे, पुरुषार्थी से पुरुषार्थहीन होने के नहीं, तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी होने के, सहारा होते हुए भी बेसहारा अनुभव करने के कारण नहीं है। कौन सा संकल्प आता है बच्चों में अभी है मेन प्रश्न, विनाश नहीं, भविष्य में भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आता है, श्रेष्ठ भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आता है, आगे क्या होगा ये प्रश्न, ये है रुकावट, ये है विघ्न, ये है बाधा, और इसके वजह से क्या हो रहा है दिल शिकस्त, इसके वजह से क्या हो रहा है थक जा रहे, इसके वजह से क्या रहा क्या हो रहा है पत्थर तोड़ते, इसके वजह से क्या हो रहा है ना उम्मीद बन रहे, इसके वजह से क्या हो रहा है हिम्मत शक्ति उल्लास जैसे खत्म हो जाता है तोड़ते तोड़ते। कितनी सारी बातें बताइए, थक जाना, पुरुषार्थ करते करते थक जाना, बहुत कर लिया अभी क्या, अभी आराम करना है थोड़ा, वो पंछे भी आ जाते हैं
बाबा
का बात रही थी या नहीं है। हाँ वो आगे आगे तो ये सब बातें है, ये संकल्प ये आ गए, इसको बाबा ने क्या कहा है तोड़ना, तो इसके लिए युक्ति बताई कि बाबा ने पहले से युक्ति बता के रखी है, एक सेकंड का साधन है कौन सा, कर्म में निमित्त भाव, तो कर्म में निमित्त भाव अगर रहा तो क्या हो जाएगा और आत्मिक स्वरूप रह जाएगा। तो हमें से ये प्रश्न आया, ये विघ्न बताया बाबा ने, इसको रुकावट बताया, बाधा बताया, और ये आने के बाद में ये सब हो रहा है, दिल शिकस्त हो रहे, थक रहे, ना उम्मीद हो रहे, हिम्मत शक्ति उल्लास खत्म हो रहा है, निराशावादी चिंतन चालू हो गया है। केवल ये ही नहीं, इस तरह के और भी बहुत सारी बातें, कई लोग मिलते हैं ना युद्ध में ही है बहुत सारे जो बहुत पहले आ गए और फिर अभी फ्रस्ट्रेशन है, सोचते हैं कि और कुछ किया होता तो अच्छा होता, कहते हैं है। एक तो भाई मुझे मिला था, वो कह रहा था अगर मुझे अभी कोई नौकरी मिल जाए ना 1 लाख वाली तो अभी तुरंत चला जाऊंगा 40 साल से,
जानबूझ के कह रहा होगा कि आप क्या जवाब देते
नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पर ये संकल्प है, संकल्प संकल्पों की बात है, संकल्पों की बात, क्योंकि देखो जब ज्ञान और योग में रुचि नहीं है तो फिर ये संकल्प तो आएंगे, बुद्धि जाना ही है बाहर, कहाँ जाएगी फिर, बुद्धि तो जाएगी ना कहीं ना कहीं, तो जाएगी वहाँ कहीं ना कहीं तो जाना ही है, इसके लिए ज्ञान और योग में बुद्धि लगा के रखना ये बहुत ऊंची अवस्था है। मुरली में रस, एक है मुरली पढ़ लिया सुन लिया हो गया, नियम निभा लिया, ये भी एक प्रकार से भक्ति है, गए अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन लिया, अभी हो गया काम खत्म, कर रहे रूटीन, उसमें क्या है वो पता नहीं, बस लिख रहे हैं नहीं
रस नहीं,
हाँ मतलब गए मीठे बच्चे, लिखा प्रश्न, लिखा फिर उत्तर, लिखा फिर बाजू में, फिर बैठे, फिर मीठे मीठे जवाब, फिर वापस लिखा धारणा के लिए था वरदान स्लोगन, हो गया खलास, अभी दूसरे दिन। ये थोड़ी है मुरली का तो चिंतन चाहिए ना, चिंतन बहुत ऊंची स्टेज है, चिंतन में एक ही शब्द में रुकना होता है, केवल ये करते रहो तो उसमें क्या, इसमें कोई खुशी है, वही 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 वही, फिर डर भी रहता है थोड़ा कि अगर नहीं गए तो लोग बोलेंगे माया ने इसको खा लिया, हमारे इधर एक बहन थी अभी तो चली गई संसार में, वो जबरदस्ती बोल जाती थी, आती थी तो मैं बोला तुम तो रेगुलर जाते, अरे जाना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलते इसको माया ने खा लिया इसके लिए आती थी, वो थोड़ा मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना, ब्राह्मण प्रेस्टीज तो वो भी भक्ति है, उसमें उन्नति नहीं होगी। हाँ तो ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें बहुत चिंतन चाहिए,
डुबो के रखना पड़ता है।
बुद्धि भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसी ब्राह्मण परिवार में, संसार में, क्योंकि योगी आत्मा है ना, तो योगियों की बुद्धि कहाँ जाएगी? देह की तरफ नहीं जाएगी, पर योगियों की दोस्ती योगियों के साथ होगी। योगी योगियों में फंसेंगे, तपस्वी तपस्वियों में फंसेंगे, तपस्वियों का कांटेक्ट तपस्वियों के साथ होगा और उन्हीं में उलझन उत्पन्न होगी एक दूसरों के बीच, बहन भाई
कुल की बात होती है, कुल में
ये कहां से? क्योंकि माया रुस्तम के साथ रुस्तम रूप में आएगी ना, साधारण रूप में थोड़ी ना आएगी। अब योगियों के सामने कोई देह थोड़ी आकर्षित करेगा उसको, देह नहीं करेगा, विशेषता आकर्षित करेगी उसको, वो विशेषता इतनी आकर्षित करेगी कि वो आत्मा खींच लेगी उसको, वहां से बुद्धि इधर। अलग अलग प्रकार की माया है, समझ में नहीं आता माया क्या है, जब तक पूरा फंस जाते तब समझ में आता है ये माया है। बेअंत है माया, सागर बेअंत है, समुन्द्र बेअंत है, तो माया भी बेअंत है, बाप बेअंत नहीं है, ऐसे बोला था उस मुरली ने। माया भी बेअंत है, माया बहुरूपी है, माया सर्वव्यापक है, माया बेअंत है, अलग अलग रूप है उसके, एक ही रूप से हर बार आएगी ऐसा नहीं है। इसके लिए उसको परखना, दूर से परखने के लिए बाबा ने कहा है, उसके लिए बुद्धि बहुत शार्प चाहिए। विकारों का डायग्नोसिस करना कौन सा डॉक्टर बनना है जो विकार को डायग्नोसिस करे फटाफट, बहुत शार्प। कोई भाई आ गया अपनी समस्या सुना रहा है कि भाई मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, जैसे डॉक्टर बैठता है पेशेंट सुनाता है, तुरंत डायग्नोसिस करता है ये है, एक दो तीन चार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। वैसे कोई आया बता रहा है अपनी स्टोरी लाइफ की, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तुरंत डायग्नोसिस, ये जो हुआ ये मोह के कारण हुआ, ये जो हुआ ये काम के कारण हुआ, ये जो हुआ ये लोभ के कारण हुआ, ये जो भी समस्या इसका कारण अहंकार। दूसरों के भी विकार का डायग्नोसिस और खुद के भी विकार का डायग्नोसिस तुरंत। इसके लिए बुद्धि योगी अर्थात क्लीन और क्लियर बुद्धि, वरदान था क्लीन और क्लियर बुद्धि। और वो क्लीन और क्लियर बुद्धि कब होगी? बहुत श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन और तपस्या, सेवा नहीं, सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। सेवा करते करते भटकने के चांसेस बहुत है, मेन हमारा फोकस है ज्ञान और योग। ज्ञान और योग है तो धारणा और सेवा आप ही होती रहे, करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे कुछ करना नहीं। जो ज्ञानी है और जो योगी है स्वतः ही जहाँ वो कदम रखेगा वहाँ सेवा है। कहाँ थे?
तो निमित्त तो
ऐसे संकल्प आने के बाद में निमित्त तो भाव रखना, एक है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ करूंगा तो ये सेवा होगी नहीं, जाओ कर लो, देखो मैं तो जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कैसे करते हो सेवा, मेरे बगैर ये होगी नहीं। अहंकार, अभिमान और अपमान दो बातें हमेशा बाबा बचें, ये सेवा मैं हूं ना, ये तो मेरी विशेषता है, देखता हूँ तुम लोग कैसे करते हो मेरे बगैर, अहंकार है ना इसमें। बाबा ने कहा ना, तुम तो ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो, ट्रस्टी अर्थात बाप जिम्मेवार है, बाप या आप, जो बाप जिम्मेवार है।
ने कल क्लास में निमित्त भी निमित्त मात्र
ये भी कहते रहना बार बार कि हम निमित्त है, बाबा करा रहा है। अहंकार की इसमें भी कभी कभी क्या होता है, ये केवल बोलने मात्र रह गया कि बाबा करा रहा है हम निमित्त है, बाबा करा रहे हम, नाम अपना करा रहे और बोल रहे कि बाबा करा रहे हम निमित्त है, निमित्त बोल रहे बस, क्या बोल रहे हैं कि बाबा करा रहे हम निमित्त, बाबा करा रहे हम निमित्त, पर अंदर से सब अपनी महिमा, अंडर द बैनर ऑफ ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी की आड़ लेके अपनी महिमा करना, वो भी एक बोझ। माया का डायग्नोसिस करना बस आ जाए, ये माया है बस, इतना पता चलता है कि ये जो आया है यही माया है, चाहे उसका कितना ही अच्छा रूप है, पर इसी को माया कहा जाता है। एक तो निमित्त और दूसरा आत्मिक स्वरूप, ज्योति स्वरूप में स्थित होना। तो बाबा ने कहा ये दो युक्तियां हैं, किस लिए? ये सब बातों के लिए। फिर आगे और एक चीज बताई, और दूसरे प्रकार के हलचल में आते, कौन से? अपने ही व्यर्थ संकल्पों की हलचल के तूफान में आते हैं। रचना करते हैं ना, तो रचना की हमने, अभी जिसकी रचना की उसकी पालना तो करनी पड़ेगी, और उसको मारना इतना आसान नहीं है। कोई बाप ने अगर बच्चे को जन्म दिया, पालना करेंगे उसको, बोलो मारो तो मुश्किल है ना। तो व्यर्थ की अगर रचना की तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है, और फिर उसको मारने को कहो तो कैसे होगा, मुश्किल है। तो बेस्ट है ना, तो तुमको जन्म लेना है ना जन्म देना है, एक मुरली चली थी ना, तुमको ना किसी को जन्म देना है ना जन्म लेना है। तो व्यर्थ की भी बात है यहाँ पर, व्यर्थ को भी जन्म देना, व्यर्थ को जन्म दिया तो उसकी पालना करो, फिर अपने आप पालना होती। एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ को निर्माण करता है, एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ, एक चिंता दूसरे चिंता की निर्मित होती है एक चिंता से, तो वैसी वाली बात है। तो बाबा ने क्या कहा, अपने ही व्यर्थ संकल्प में हिल जाते हैं, अपने निश्चय का फाउंडेशन हिल जाता है। फिर क्या क्या हिल जाता है, फिर वो कौन कौन से संकल्प आते हैं, अभी वो लिस्ट कौन बता रहे, हाँ कौन कौन से, विनाश न मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, शिव भगवान वाच ठीक है या नहीं ठीक है, निश्चय से दूसरों को सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, ईश्वरीय सेवा में लगाऊं या जमा करूं माल, बहुत दिख रहा है इधर तो क्या लगाने की जरूरत है, और वेस्ट भी बहुत कर रहे हैं ये लोग, छोड़ो इधर लगाते हैं कहीं और, जहाँ जरूरत है वहाँ देखेंगे बाद में, अभी रहने दो। और कौन से प्रश्न है उसमें, गुप्त रहे या प्रत्यक्ष हो गए,
प्रवृत्ति के सम्मान करें या सेवा में लगे,
सेवा में लगाए, वही तो ये सारे प्रश्न है। हाँ, सेवा में लगे तो निराकार और साकार की भी, साकार तो चला गया, निराकार आकारी आकारी बन गया, निराकार भी, और सामना करने के लिए तो हम है, तो ऐसे संकल्प आते हैं बच्चों के। तो ये संकल्प बाबा ने कहा है, जैसे बाबा ने पूछा क्या हो, गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो, अगर ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, आप या बाप, अगर बाप जिम्मेवार है तो कब होगा क्या होगा ये संकल्प ही नहीं उठ सकता है। हाँ, बाप को बोझ दे दिया अभी, फिर अपने ऊपर
छोटे छोटे संकल्प
अभी आएगा, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ अभी है, निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत सदा निश्चिंत। जब बाप ने तुम्हारी सारी चिंताएं ले ली है तो तुम क्यों चिंता करते हो, फिर सुशील भाई स्वर्ग में जाना है या नहीं जाना है, दो ऑप्शन है अभी, नहीं अभी दो ऑप्शन है, एक तो स्वर्ग में विनाश हो जाए और स्वर्ग में जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि इधर ही रहे, क्या ए या बी, एक ही बताओ, कोई भी एक बताओ तो मैं आंसर दूंगा फिर। यही ठीक है, अरे इस तमोप्रधान विकारी पतित दुनिया में रहना है, अरे बाप तुमको लेने आया है तुम यहाँ रहना चाहते हो, ये विषय वैतरणी नदी, ये वेश्यालय है, ये मृत्यु लोग, इसके लिए कहा था कोई एक ही अर्थ बताओ, इसमें तुम रहना चाहते हो, इससे तो तुमको ममत्व निकाल देना है, ये कांटों का जंगल है, पर तुमको इस दुनिया में रहते हुए भी रहना नहीं है, तुमको तो अभी चलना है, तुमको सारा अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, तुम्हारी बुद्धि तो राजधानी में लगी हो रहनी चाहिए, इसके लिए दो ऑप्शन दिए थे ए और बी। तो बाबा से
जो भी ऑप्शन
है, बी वो भी बोला है ये भी बोला है,
आज के मुरली हिसाब से तो संगम ही अच्छा है ना, आज के मुरली हिसाब से जो भाई से बोले उसके नीचे वही बात,
कल बाबा दूसरी मुरली जाएगा तो फिर दुर्गा मचा जाएगा,
अगले संडे को आएगा।
ये कल्याणकारी संगम है, एक मुरली चली थी ना वो है अकल्याणकारी संगम जो द्वापर का है। तो आगे क्या बोला, निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो बाप अगर सब चिंता है ले रहा है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद से प्रश्न पूछते हैं ना विनाश के लिए, तो बाबा ने कहा क्या यहाँ प्राप्ति कम है, क्या यहाँ कोई कष्ट है तुम? अरे ये जीवन कौन सा है, हीरे तुल्य जीवन, ब्राह्मण जीवन, चढ़ती कला का जीवन, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन, सर्व अनुभूतियों संपन्न जीवन, बाप से मिलन मनाने वाला ये जीवन, हीरे तुल्य जीवन, अतीन्द्रिय सुख तुमने भक्ति में कहा था कि चौगुना मिल जाए, तो वो अभी तुमको चाहिए ना? यहाँ कोई कष्ट है तुमको, यहाँ कोई तकलीफ है तुमको, यहाँ कोई अप्राप्ति है तुमको? बाप से उग गए, बाप से पूछते हो क्या समाप्ति की उत्कंठा है तुम में? बाबा से जब पूछते थे बाबा विनाश कब होगा, अरे बाप से पूछते हो कब जाओगे, बाप से पूछते हो कब जाना है, बाप का अपमान करते हो, घर आए मेहमान को पूछते हो कि कब जाओगे, साकार मुरली थी एक आजकल होता। तो बाबा ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है, चढ़ती कला का जीवन है, बाप से मिलन मनाने का जीवन है, सर सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है। अरे तुमको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या अप्राप्ति है, क्यों जाने की उत्संग है? ये है भक्ति में तुमने अतीन्द्रिय सुख के लिए कहा था कि चौगुना हो जाए, तो अभी हुआ है फिर भी ऐसे संकल्प करते हो, तो ये व्यर्थ संकल्पों के तूफान है। बाबा ने कहा इन तूफानों को अब समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, निश्चय बुद्धि बनो, व्यर्थ संकल्प के तूफान को समाप्त करो।
थोड़े दिन के बाद बोला था शरीर में संस्कार नहीं
होगा, मोस्ट वैल्यूएबल है इस शरीर से, तुम्हें कभी तंग नहीं होना, इससे कमाई करनी है, यहाँ कमाई है। तो फाइनल आंसर क्या है फिर, जाना है कि नहीं जाना है, किधर ही रहना है? जैसे बाबा चाहे, ड्रामा होता कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी समय, तो भगवान वाच जो कुछ भी है वो सब कल्याणकारी, उसमें कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का एक एक सेकंड का लाभ उठाओ, ये दिन भी तुमको याद आएंगे। कौन से दिन, कौन से दिन, कौन से दिन? भाग्यवान के साथ, भाग्य विधाता के संग में बिताए हुए ये दिन, ये विनाश, विनाश के समय भी ये दिन तुमको याद आएंगे, ऐसे भाग्यवान दिन है ये दिन तुमको याद आएंगे।
जब इतने लोग नीचे आए और बाबा नहीं आए तो लग रहा था कि 10 मिनट के लिए बाबा आए तो बहुत अच्छी
बात। ये दिन तुमको याद है प्रभु प्रेम, प्रभु मिलन के जो दिन है ना,
बाबा दृष्टि दे तो लगते
है, भले पुराने वीडियो दिखा दी फिर भी मजा नहीं आया,
नहीं लगता था कि 10 मिनट के लिए बाबा आ गए ना।
बाबा ने बोला एक समय आएगा कि बाप आएगा, दृष्टि देगा और जाएगा, तब समझ लेना अभी विनाश का समय आ जाएगा। बाबा आएगा, बात नहीं करेगा और देखेगा और दृष्टि देकर निकल जाएगा, तब समझ लेना पढ़ाई पूरी हुई।
धीरे-धीरे कम होता है ना, इस बार आएंगे
एकदम कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा, डिटैच हो रहा है ना वो, अगर अनाउंस करके डिटैच हो जाए, अगर दो दोस्त है और एक दोस्त कहे कि मैं आज से तुझसे बात नहीं करूंगा, उसको तो बहुत ज्यादा याद आएगी, आज से हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, और ही ज्यादा याद आएगी, और ही ज्यादा मैसेजेस भेजेंगे एक दूसरे। तो जो जिससे डिटैच होना है उसको बता के थोड़ी डिटैच किया जाता है, किसी से दोस्ती तोड़नी है कोई भी कारण, उसको बताएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा युक्ति से, तो बाबा ऐसे थोड़ी ना बताएंगे अभी मैं जा रहा हूँ ये तारीख को, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा। वो तो नहीं आएंगी ना शिव बाबा।
Oh, you're here, eh?
ब्रह्मा नहीं आती है, शिवा आती है, हमारी बहन है तो बात करती है।
ठीक है,
तो ये प्राप्ति के दिन याद आएंगे, विनाश के समय ये दिन आएंगे। अगर एक व्यर्थ संकल्प से तुम अगर हलचल में आते तो महाविनाश के महातूफान में कैसे ठहर सकेंगे, महाविनाश के महातूफान में। और तब तो एक व्यर्थ संकल्प है, वहां तो चारों तरफ से व्यर्थ होगा और कई सारे तूफान हो गए। एक तूफान नहीं होगा, पांच विकार और पांच तत्व, प्रकृति के दस खिलाड़ी, प्रकृति के पांच और विकार पांच, तो खिलाड़ी खेल के बिना रह सकते हैं क्या? पूरा फोर्थ में आएगी, जिसकी जो कमजोरी है वो कमजोरी पूरा फोर्थ से बाहर निकल के आएगी। किसी में लोभ रह गया, किसी में काम विकार, देह की आकर्षण रह गई है, विनाश के समय उसको देह ही दिखेगी, आकर्षण करेगी, वो संस्कार बाहर निकलेगा उसका, बराबर है ना? निकलेगा कि नहीं?
तो इनके लिए विशेष साधना चाहिए, एक माना
घनघोर साधना चाहिए, विशेष नहीं, महाभयंकर साधना, संस्कारों को भीषण, संस्कारों को परिवर्तन करना कोई मासी का घर नहीं है, मासी बहुत बहुत उसके पीछे लगना पड़ेगा।
व्यक्तिगत योग भी करना चाहिए अपने को, खाली
सकारात्मक इतना समय ऐसे थोड़ी लग रहा है उसको भगवान को,
रूटीन में
बहुत बहुत ये तो कोई भाषण करने की, भाषण सुनने की बात नहीं है, एक स्वयं का चिंतन, अपना चिंतन को बढ़ाने की बात है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की बात है। दूसरों के ओपिनियन ये लेक्चर वो जो भी है वो करते हैं वो करो, बट स्वयं स्वयं ही बनना, आगे बढ़ाना है स्वयं को, कोई दूसरा हमारी मदद नहीं कर सकता। ये जब समझ में आ जाएगा ना तब पुरुषार्थ चालू होता है। कई लोग लेक्चर सुनना, ये करना, वो करना, ये सब ठीक है, आधार है, पर हमको हमारा पुरुषार्थ स्वयं करना है। हमारे इस संसार में आत्मा का आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है, आत्मा के लिए कोई नहीं है, कोई कुछ उसकी मदद नहीं कर सकता है, स्वयं की मदद स्वयं करनी है, स्वयं को ही स्वयं ऊपर होना है। पेशेंट जो है वो खुद अपनी बीमारी को जितना ज्यादा जानता है उतना डॉक्टर नहीं जान सकता, उसको खुद ही अपनी बीमारी के बारे में पहले थोड़ा चिंतन करना कि क्या है मुझे और कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। इसमें भी लोग भटकते हैं इधर उधर, अपनी समस्या सबको सुनाकर बैठते हैं, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, और होता कुछ नहीं, और गड़बड़ होते, बीमारी को बढ़ाता है। लोग नए नए ओपिनियन देते अपने, ये करो वो करो, जैसे उधर देते स्थूल वैसे ये सूक्ष्म में मानसिक रोग है, उसके भी अलग अलग कंफ्यूज हो जाता है। स्वयं की बीमारी का स्वयं डायग्नोसिस करो कि मुझे एक दो तीन चार पांच, पांच विकारों में से क्या है इनका, ये तो मेन है, एक एक बीमारी के सौ सौ है उसके साथ साथ खिलाड़ी, काम के एक सौ रूप है अलग, क्रोध के सौ रूप है अलग, छोटे 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 छोटे, खुद का खुद डायग्नोसिस करो। और क्या बोला बाबा ने यहाँ पे, संपत्तिवान
धैर्य रखो, कुछ ऐसी बात,
हाँ धैर्य की, सुख के दिनों में धैर्य रखो, और अधैर्य नहीं बनो, ऐसे कुछ अधैर्य में मत आओ, भविष्य के अधैर्य में मत आओ, और अभी के जो सुख के दिन है उसमें धैर्य रखो, उसमें धैर्य रखो, और ड्रामा अनुसार जो भी कल्याणकारी है हिम्मत से, उल्लास से, त्रिकालदर्शी बनकर हर सीन को देखो। मैं भी बोला एक लाइन, स्वयं भी ये कर, क्योंकि स्वयं को स्वयं समर्थ बनना है और विश्व को भी समर्थ बनाना है। फिर वो स्वाहा करने की बात बोली ना, तो ये अभी दिल शिकस्त नहीं बनो, अभी क्या करो, खुश रहो, अभी ये जो संकल्प है इनको स्वाहा कर दो, आहुति दे दो, और भोग किसका लगाओ, समर्थ संकल्प रूपी फल का भोग लगाओ, आहुति और स्वाहा एक ही चीज है, ये जो व्यर्थ संकल्प जो आए ना उसकी आहुति, और जो संशय के संकल्प जो आए ना आगे क्या होगा उसकी आहुति, यहाँ अंतिम यज्ञ में आहुति दे दो, स्वयं को स्वाहा किया है तो ये संकल्प क्या है उसके आगे। तो ये थी आज की।
लास्ट में बोला ना मन बुद्धि संस्कार में जो बाप से
मन बुद्धि संस्कार भी
मन संकल्प में भी
हर एक महावाक्य के डायरेक्ट महावाक्य का संकल्प के भी ट्रस्टी समझने वाले वो जो याद प्यार है ना बाप के हर एक महावाक्य वो जो याद प्यार है ना बहुत पावरफुल है।
महान अर्थ
को समझने वाले पढ़ो एक बार
ये है ना। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले संकल्प के भी ट्रस्टी अर्थात जो बाप के संकल्प बच्चे के संकल्प ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान
मन बुद्धि संस्कार
बाप दादा के समीप आत्मा
एक तो ये पता चाहिए पुरुषार्थ में कि हम बहुत पीछे हैं। ये निरंतर संतुष्ट नहीं होना है बाकी सब बातों में संतुष्ट पर पुरुषार्थ में निरंतर डिवाइन डिसकंटेंट डिवाइन डिससेटिस्फेक्शन चाहिए एक दैवी असंतुष्टता जिसको इंग्लिश में डिवाइन डिसकंटेंट कहा जाता है उसमें संतुष्ट नहीं होना है कि आज तो बहुत अच्छा अमृत वेला किया और दिन भर कुछ नहीं हर दिन तीव्र पुरुषार्थ की एक दूसरी परिभाषा आई थी ना एक वरदान में एक सेकंड पहले जो पुरुषार्थ था उसके आगे का पुरुषार्थ एक सेकंड के बाद का पुरुषार्थ उससे आगे हो ये है तीव्र पुरुषार्थ उससे आगे 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 ये है तीव्र पुरुषार्थ। स्लोगन वरदान बोल बोर्ड लगाने से होगा नहीं कुछ साइलेंस लगा के भी रहते थे लोग जरूरत नहीं 12-15 तो बहुत कम हो गए हमें हम जो करते हैं वो उससे भी कई ज्यादा है 12-15 तो कम बोल दिए बाबा ने 4 शब्दों का है तो हम उसको तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना विस्तार का कितना भी विस्तार किया जा सकता है। कोई माताओं को बोलो कि ज्ञान का चिंतन करें तो कहेंगे हमारा ज्ञान का चिंतन नहीं होता कोई दूसरी बातों में लगा दो तो रात भर चल लो रहेगी बातें वो कैसे हुआ
नेचुरल
है वो ज्ञान का चिंतन करने बोलो चलो चिंतन करो परोपकारी कैसे बनो 25 पॉइंट निकालो अरे बाप रे हाथ कैसे कैसे लिखे और दूसरा कोई चिंतन करो किसने किसके साथ क्या क्या किया किसने मेरे साथ क्या क्या किया ये भी किया वो भी किया ऐसा भी किया वैसा भी किया मेरे साथ नहीं और भी 3-4 लोगों के साथ भी ऐसा किया पूरा विस्तार विस्तार करने की शक्ति है हमारे पास चिंतन की शक्ति है पर हम उसको मुरली छोड़कर ज्ञान छोड़कर कहीं और लगा रहे नहीं तो ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मेरे पास चिंतन नहीं है चिंतन मेरा होता नहीं करना सबके पास है हमको कोई किसी कोई अपमान करते तो रात भर चिंतन चलता है कहाँ से आ गई शक्ति चिंतन की और अच्छा चिंतन चलता है फिर प्लानिंग भी करते हैं अभी देखता हूँ इसने ऐसा किया अभी क्या मैं करूँ इसके साथ आने दो इसको भी तो काम पड़ेगा हमारे डिपार्टमेंट में आने दो टोली लेने तो आएगा ना कभी ना कभी तो देंगे ही नहीं तो जैसे वो चिंतन चलता है तो इसका भी इस तरह चिंतन चले केवल पढ़ना नहीं है उसको कन्नरस है वो फिर मुरली सुनना भी एक प्रकार से बहुत अच्छा कैसी थी मुरली बहुत बढ़िया आज बहन जी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई इतनी मीठी सुनाई वाह इतने उदाहरण बहुत बढ़िया क्या था वो मत पूछो बस बहुत अच्छा था वो क्या था वो मत पूछो बस जादी जानकी का क्लास बहुत बढ़िया था अरे आना चाहिए था तुमने कहाँ थे तुम अच्छा क्या था वो मत पूछो बस
पूछो
स्लोगन
प्यार के
पीछे और एक हफ्ते में कुछ पावरफुल संजय भाई
शूट
बुद्धि होशियार समझदार शूट बाकी में आएगी यहाँ के बंद नहीं करेगा और क्या करेगा इधर उधर दवाई
दवाई की तरह उनको याद करना मुश्किल लगेगा जो दवाई वाले होंगे
मुरली में बुद्धि भटकती है ना तो उसका एक है कि पहले से मुरली कई लोग ऐसा करते हैं पहले से पढ़ के जाते हैं तो एकाग्रता रहती है बहुत ज्यादा अगर मिल जाए पहले से तो पहले से थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा चिंतन भी करके फिर जाके अगर बैठे ना तो बुद्धि यहाँ वहां जाने की चांसेस कम हो जाते हैं नहीं तो सब कुछ नया नया सुनने को मिलता है ना
पहले
तो वो इतना नहीं जाता
फिर क्लास में जाने की क्या जरूरत है
मार्क चार्ट लिखने के मार्क्स से हाथ खड़ा करने के ऊपर करने के मार्क्स से वो वाली बात
वही
पढ़ाई में आके बोलने
कई बार इसमें भी अलविले हो जाते होंगे
नहीं पर एक ही चीज है बाबा ने कहा पढ़ो या सुनो वट एवर सुनना एक रीति है पर सुनने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है
पढ़ने से
पढ़ना
याद रहता
खाली सुना इधर से सुना गया कितनी बार सुना है काम महाशत्रु है काम आदि मध्यांत दुख देता है बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं सुना गया आगे
पढ़ने से क्या हुआ
पढ़ने पे बुद्धि हमको टिकानी है उसमें धीरे धीरे चिंतन करते करते करना पड़ना है धीरे धीरे
चलती है
उसमें थोड़ा रुकते है ना क्योंकि मुरली में 100 पॉइंट्स है अलग अलग पॉइंट्स है कभी कहेंगे बाबा सहनशील बनो बाप की आज्ञा है अभी अभी ये पॉइंट हुआ तो अभी भी दूसरा स्लोगन भी अभी अभी मुरली में भी 10 बार अलग अलग पॉइंट है बुद्धि टिकती नहीं वहां पर मतलब कुछ भी याद रखने के लिए थोड़ा देर बुद्धि को वहां टिकाना होता है स्टॉप करना होता है मुरली जो चलती है कई लोग सुनते हैं मुरली भी सुनते हैं फास्ट चलता है ना कहाँ आप उसको कितना रिटेन करोगे हाँ वो है और चलो आपने कान में लगा के सुना मुरली पूरा अकेले में बैठ के मुरली सुनना पर सुनना जो है वो सुनना है फिर भी एक है बैठ कर जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं खाली सुनते थोड़ी है स्टूडेंट का काम क्या है एक डायरी होती है नोट्स होते हैं उनके पॉइंट्स निकालते हैं और फिर याद करते हैं उसको फिर बुद्धि में रखते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं क्या था मुरली की पॉइंट्स हमारे मुंह से निकलती रहनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर
पढ़ने में थोड़ी स्वतंत्रता भी रहती
है हाँ अपना रुकते हैं ना
सुन रहे हैं ना वो भी जरूरी है लेकिन वो पढ़ते जाएंगे आगे चले जाएंगे
अभी देखो वरदान है वरदान है बाबा ने कहा सहनशील बनो हम राइट है फिर भी हमें ही मरना पड़ेगा हमें ही सहन करना पड़ेगा कब तक सहन करें ये वरदान है इस तरह से आ रहा है सामने पढ़ा जा रहा है हम भी सुन रहे हैं पर उसमें कितनी अच्छी बात है कि क्यों सहन करना है बाबा ने कहा मोहब्बत से सहन करना है मजबूरी से सहन नहीं करना ये बाप की आज्ञा है सहनशील बनो अभी ये जब पढ़ते ना तो हमारी बुद्धि यहाँ रुकती है केवल सुनेंगे तो रुकती कहाँ है सुनने के बाद तुरंत स्लोगन आ रहे हैं आप जगह वो पढ़ के पूरा पूरा युक्त हो गया यहाँ पे हमको रुकना है अभी क्यों सहनशील बने ये तो बाबा ने एक पॉइंट बताई आगे की पॉइंट क्या है हर चीज में 10-10 पॉइंट निकालो सहनशील क्यों सहनशील बनना सहनशीलता के क्या क्या फायदे बाबा ने कहा आग बंद नहीं करो एक कारण बाबा ने बता दिया बुद्धि इधर उधर भटकती है पर हम दूसरे कारण निकाले ना फिर 10 कारण आग बंद क्यों निकली की जाए ऐसे मतलब ये चिंतन है कि कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है और या फिर किसी के क्लास के लिए नहीं रुकना है कि वो क्लास में पॉइंट सुनाए तो हम सुने अरे हम अपना चिंतन करके पॉइंट निकाले कब तक क्लास सुनते रहेंगे
अपने पैर खड़ा होने
का अभी खुद खड़ा होना है ना क्लास ही सुनते रहेंगे अव्यक्त मुरली चली चलो क्लास सुन लिया बहुत अच्छा पर हमारा अपना चिंतन कहाँ है अपना भी तो चाहिए कुछ वो सुन लिया वो कनरस है मुरली सुनना कनरस है खाली अच्छा लगना कि बहुत अच्छा है उसके ऊपर चिंतन चाहिए ना अभी सहनशील क्यों आंखें बंद नहीं हमारा अपना चिंतन चलेगा और चिंतन जब करने लगेंगे या लिखने लगेंगे तो हमको आश्चर्य लगेगा इतना सारे पॉइंट निकल गए हमने तो सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि इतने हम लिख भी सकते हैं फटाफट और क्या बोला एक हफ्ते में एक दो पॉइंट और।
मेरे दिल दुबई है जिसका दिल में अनहद गीत बचा रहे, मेरा बाबा मेरा बाबा,
मैं बाबा का बाबा मेरा दिल रूबा अर्थात दिल रूबा मतलब बताओ दिल रूबा मतलब क्या?
इतनी अच्छी बात बोला इसके दिल में ये
थी। दिल रूबा मतलब दिल भर की दिल रूबा, आशिक माशुक वाली बात है, दिल भर दिल रूबा होते हैं ना आशिक माशुक प्रेमी प्रेमी।
और
बाबा ने कहा खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे,
तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्थ का संबंध हैप्पीनेस से है, जो जितना खुश है वो उतना तंदुरुस्त है, जो जितना अंदर से दुखी है वो उतना बीमार है। और
अनिल भाई,
अनिल भाई किसी भी शरीरदारी को याद नहीं, बस मुझे याद कर,
प्यार नहीं रखना है
किसी भी दयादारी से, प्यार
प्रवृत्ति
मार कर
लव करना, बाप और बच्चे का संबंध है, सन्यास के अंदर ऐसा नहीं है।
सन्यासी और शिष्य उनके जो चेले हैं उसमें लव कहाँ होता है, वहाँ तो देहभान होता है, लव तो इधर होता है, गुरु बच्चे कृष्ण ही सन्यास। और क्या क्या
और जिसका मिजाज मीठा है,
अरे ये तो बहुत पुराना है ना,
गाने में ताकत होती है
अगले हफ्ता में था ना, मीठा मिजाज हो
उस सपन में दुख नहीं
निकले, देख के ही बता दो ना इंजीनियर के बारे में खोल के
दिखा नहीं पढ़ा नहीं
डबल लाइट
रहना है तो
अपने जिम्मेवारी का
बाप के हवाले कर देते हैं। परमंशों को भी याद किया पर उसमें एक मिस्टेक है,
काफी
उसमें मिस्टेक है एक, कौन सी नहीं उसमें एक मिस्टेक है, बाबा ने हमेशा कहा है स्वामी राम तीर्थ के बारे में कहा है कि वो जब अपना लिखता था अपने नौकर से कहता था यहाँ से चले जाओ, अभी रामकृष्ण परमहंस तो निरक्षर अनपढ़ थे, वो तो उसने कभी अपनी बायोग्राफी लिखी नहीं है, वो मिस्टेक है।
अच्छा तो राम तीर्थ है,
वो राम तीर्थ है और बाबा ने मुरलियों में ही कहा है कि राम तीर्थ जब लिखता था स्वामी राम तीर्थ थे ना, तो अपने नौकर को कहता था यहाँ से चले जाओ हाथ चेले को, तो यहाँ वो पॉइंट इसमें डाल दी, पर वो तो रामकृष्ण परमहंस ने अपना कभी लिखा ही नहीं, उसको तो लिखना ही नहीं आता था, वो तो अनपढ़ गवार
शक्कर,
हाँ वो तो माँ माँ करने वाला है,
चल जाता आपको कहाँ
बता रहा हूँ एक बात, बाबा ने अच्छी बात कही, वो तीखा और कड़ा सन्यासी था, बाबा ने ये भी कहा कि माँ की दृष्टि, तो माँ की जब दृष्टि रखते हैं तो यहाँ भाई भाई की, पर माँ की दृष्टि में भी विकार के ख्याल नहीं आते, इसके लिए स्त्री को जगत जननी माँ समझना ये भी एक ऊंची अवस्था है। सन्यासियों का वो मार्ग है निवृत्ति मार्ग है, पर फिर भी वो जो भाव है ना, हाँ युक्ति है वो भी
बनने के लिए
जरूर, मतलब वो भी है जरूरी है, ब्रह्मचर्य में आता है ये सब बातें।
बाबा ने
तो हाईएस्ट बता दिया ना, भाई भाई पर वो होना भी तो चाहिए, आत्मिक दृष्टि साधना है, आत्मिक दृष्टि की साधना, स्वमान की साधना, अशरीरीपन की साधना, परम धाम में टिकने की, ये एक एक साधना है जो एक एक दो दो दिन से नहीं होगा, कुछ सालों से नहीं होगा, कई सालों तक लंबा समय चलेगा तब वो होगा, तीव्र पुरुषार्थ जिसको कहेंगे ना, होगा
किसी की चिंता नहीं हो पाता है।
इसलिए सभी के मन में एक दो मिनट दादी के बारे में,
ऑलमोस्ट डेली जा रहे हैं, दादी को बहुत ब्लीडिंग चालू हो गया था, वो जलन तो था ही, पर जब उस दिन 5 तारीख को स्टूल में ब्लीडिंग, हाँ स्टूल में ब्लीडिंग चालू हो गया था, तो हीमोग्लोबिन तो पहले 13 था, वो ड्रॉप होके 10 हो गया, तो इमिडिएटली फिर उसी रात में हमने एक ब्लड चढ़ाया वहीं पर, चालू कर दिया रात में, नहीं नहीं इधर की कॉटेज शांति यहाँ शुरू, नहीं नहीं पहले की बात, जाने से पहले वहीं रात में एक ब्लड दे दिया, पर दूसरे दिन वापस एक दोपहर में हुआ, फिर 3 बजे वापस हुआ, फिर रात में हुआ, फिर ब्लड गया, फिर दूसरे दिन सुबह हुआ, तो सुबह ये जो ब्लीडिंग इस तरह से जब होता है इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, इसको फटाफट इंडोस्कोपी करो या कोलोनोस्कोपी करके कहाँ ब्लीडिंग है वो रोकना होता है। तो वहाँ पे काफी डिस्कशन चर्चा, यहाँ जाना वहां जाना, तो फाइनल डिस्कशन हुआ एक डॉक्टर मायदेव करके है मुंबई में, जो वेरी फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सबसे फेमस। तो उनका अपना एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम भी है ग्लोबल हॉस्पिटल, ऐसा नाम है, वो ग्रुप है हॉस्पिटल का, हैदराबाद में उसका मेन है। तो हमने सोचा कि हम वहां जाएंगे, तो चार्टर्ड फ्लाइट किया और उस पर वहां लेके गए। मैं नहीं गया, डॉक्टर राहुल गए, क्योंकि यहाँ मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ फिर मुश्किल होती है। तो डॉक्टर राहुल जो नीचे वाले वो छोड़ के गए। दादी वैसे ठीक थी दूसरे दिन, पर वहां जाने के बाद वापस ब्लीडिंग हुआ। तो फिर ये लोगों ने मुझे उसी दिन शाम में फोन किया कि अभी तुरंत निकल के आ जाओ, क्योंकि वहाँ अपना अपना कोई रहा डॉक्टर तो थोड़ा एक सपोर्ट रहता है। तो मैं जब दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो दादी को तो लाइन मिलता नहीं है, तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया था। तो तब दादी आईसीयू में थे, पर आईसीयू में दादी आईसीयू में वो बड़े कड़े, दादी जो बोलती है ना, बड़े कड़े लोग थे, ऐसे टाइप का, अंदर जाने नहीं देते ना। तो वहां पे दादी को दो खून चढ़ाए, फिर उन्होंने सोचा कि अभी वहां जाते ही पहले दिन इंडोस्कोपी किया, तो इंडोस्कोपी ऊपर से करते हैं, उसमें कुछ कारण पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन कोलोनोस्कोपी किया कि नीचे से पूरा देखते हैं, कोलोनोस्कोपी किया कुछ पता नहीं चला कि ब्लीडिंग कहां से हो रहा है। फिर एक दूसरा एक जांच होती है सीटी एब्डोमिनल एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे पेट का एंजियोग्राफी। तो पेट की एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट किया, पेट का एंजियोग्राफी पूरा हुआ, उसमें भी कुछ नहीं पता चला और ब्लीडिंग चालू। फिर उस दिन रात में 11-12 बज गए थे, 12 बजे ब्लीडिंग हुआ। तो फिर हमने वापस डिस्कशन किया, क्योंकि जो मेन डॉक्टर थे वहां वो छुट्टी पे थे, एक ही दिन में कहीं चले गए थे, उसके सब असिस्टेंट्स थे वहां पे। फिर हमने वापस उससे डिस्कस किया कि वापस 12 बजे ब्लीडिंग हुआ, तो एक दूसरी एक प्रोसीजर होती है डीएसए, जिसको कहते हैं डिजिटल सब्स्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, एक दूसरे प्रकार की एंजियोग्राफी। तो हमने डिसाइड किया कि तुरंत वो करनी है, क्योंकि जब ब्लीडिंग हो रहा है तब पकड़ में आ सकता है कि यहां से ब्लीडिंग हो रहा है। तो आधी रात को वो डॉक्टर गिरीश को बुलाए, वो सबसे फेमस है इस चीज में, जिसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो आया रात में, गुलजार दादी, संतोष जी सब बाहर बैठे रहे 3 बजे तक, प्रोसीजर चालू हुआ 1 बजे तक, हम लोग तो समंदर थे प्रोसीजर में। पूरा एक एक वेसल ढूंढा, कहीं ब्लीडिंग पता नहीं चला। फिर दादी वापस हो, और हर प्रोसीजर को दादी को कन्विंस करना कोई मासी का घर नहीं है कि अभी ये करने जा रहे हैं, अभी वो करने, क्यों, क्या, कैसे, पूरा उसको बताओ। और दर्द बहुत हो रहा था उसको, जलन जलन। तो पर वो जो हॉस्पिटल था वो इतना, मतलब डॉक्टर्स अच्छे थे, पर उसका जो बाकी का जो स्टाफ था वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे, उसका मैनेजमेंट कुछ इतना ये नहीं था। फिर एक ब्लड, दो ब्लड, एक तो हम मैंने इधर दे दिया था, वहां जाते ही दो गए। फिर दूसरे दिन देखा हीमोग्लोबिन जो था 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 तक आ गया, 5 हीमोग्लोबिन तक आ गया लोएस्ट। पर वो भी सिचुएशन में दादी अपना, मतलब वो मुरली ज्ञान सुनाना वो सब चालू ही कारोबार, इसको टोली दो, उसको वो दो, नाश्ता किया, खुद कुछ दे नहीं रहे उसको हम, और वो हमको पूछ रहे नाश्ता किया, और हम बोल रहे किया, क्या क्या किया अभी बताओ, और उसको कुछ दे नहीं रहे। तो हीमोग्लोबिन 5 तक आ गया, फिर ब्लड नहीं मिल रहा था, क्योंकि दादी का जो ब्लड ग्रुप है वो दुनिया में सबसे रेयर है, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं, लाखों में किसी का एक रहता है। दादी भी विशेष आत्मा है वैसे तो, तो फिर वहां पे वो हमको भी नहीं बता रहे हॉस्पिटल वाले कि नहीं है, तो हम अरेंज कर देंगे। शाम तक सुबह का हीमोग्लोबिन 6 था, शाम को 5 हो गया। उन्होंने बताया नहीं हमको कि आप अरेंज करो, वो बोले आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, अरे कब आ रहे। फिर हम लोगों ने फटाफट जे हॉस्पिटल में जाके 2-3 ब्लड अरेंज किए, 3 ब्लड दिए। फिर दूसरे दिन वापस ब्लीडिंग चालू हुआ, फिर वो डॉक्टर आ गया जो मेन डॉक्टर था महादेव, ही केम। तो वापस ब्लीडिंग चालू हुआ, उसने बोला मैं वापस इंडोस्कोपी करूंगा और वापस कोलोनोस्कोपी करूंगा। वो तो एक प्रकार से, मतलब इस उम्र में 98 की उम्र में ये सब करना एक प्रकार से वो भी, मतलब एक बार हो चुका है वो, अभी वो बोला मैं वापस करता हूँ। तो मैंने थोड़ा तैयार,
डॉक्टर का डॉक्टर भी नहीं मानते
नहीं हमने, पर कैसा है क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है अभी, तो होते समय अगर किया जाए तो वो बोले 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, इंडोस्कोपी किया वापस, कुछ नहीं, कोलोनोस्कोपी भी है, जो प्रोसीजर को 20 मिनट लगते हैं वो प्रोसीजर को डेढ़ घंटा लगाया, एक बूंद नहीं अंदर इंटेस्टाइन में, जो कि अभी अभी एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा था, इतना सारा ब्लीडिंग, और यहाँ देखा तो कुछ नहीं, सारे डिसअपॉइंट हो गए, अभी क्या करे, अभी और कितना खोदे, 6 प्रोसीजर तो हो गई, 2 बार कोलोनोस्कोपी, 2 बार एंडोस्कोपी, 1 बार सीटी एनजीओ, 1 बार डीएसए। तो फिर हमने एक फाइनल डिसीजन लिया, अभी जो भी है 4-5 दिन हो गए कि पता नहीं चल रहा है, अभी और कुछ नहीं करना है, रुकेगा तो अपने आप रुकेगा फिर वो, क्योंकि जो खून को पतला करने की गोली चालू थी हार्ट की, शायद कभी उसके वजह से भी हो सकता है, और एग्जैक्ट ऐसा कोई कारण पता नहीं चला कि इसके वजह से होता। फिर एक फाइनल प्रोसीजर है कि खोलो, ऑपरेशन करो, वो मेजर सर्जरी है, उसमें ऊपर से स्कोप भी डालेंगे इंच बाय इंच, अभी 22 फुट का इंटेस्टिन है, इतना बड़ा हमारी आंतें है, वो एक में कहां हो रहा है, ऊपर से अगर करते एंडोस्कोपी तो इधर का पता चलता है, नीचे का इधर का, पर बीच का जो एरिया है वो अभी भी छूटा हुआ है, अभी उसको देखने के लिए फिर खोलना, अभी 98 की उम्र में खोलना मतलब। फिर हम लोग सब बैठे, जयंती बहन, मैं, संतोष बहन, सब लोग बैठे और डॉक्टर के साथ भी डिस्कशन की, और हमने उनको कहा कि हमको अभी कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, जो है वो ठीक है, वो अपने आप रुकेगा तो रुकेगा, हम जा रहे। दूसरे दिन का हमारा फ्लाइट का हो गया, तो उस दिन रात में वापस ब्लीडिंग हुआ, और वो डॉक्टर राउंड के लिए आए, बोले एक चांस मुझे दे दो बस एक बार वो प्रोसीजर मैं वापस करता हूँ, वो डीएसए एक दूसरी प्रोसीजर है जो डॉक्टर गिरीश को बुलाया था, तो वापस उस दिन रात को लिया 12 बजे। बुलदा दादी कहे मैं भी रुकूंगी, दादी ने कहा नहीं आप उस दिन रुके थे, अभी नहीं रुकना है, जाओ आप वो दोनों का अपना रुरियान चालू दादी चली गई, फिर हम लोग रुके, वापस गए डीएसए के लिए, डेढ़ घंटा चला कुछ भी नहीं मिला। बाबा से भी पूछा, बाबा मतलब वो सब चालू था पे पेट में, और इस बीच में तो हजारों फोन इधर उधर से, वो तो सब रह गए। तो फिर दूसरे दिन जाने का फायदा हुआ, तो हमने फाइनल किया, फिर भी वो डॉक्टर ने बोला मतलब देखो आप, मैं यहाँ आके भी कोई अगर कोई प्रोसीजर करना, हमने बोला कुछ नहीं करना है अभी बस। अभी सुनो, फिर एयरपोर्ट पे है वो चार्टर्ड फ्लाइट के लिए, वो कलीना, वो एयरपोर्ट पे 3 बार ब्लीडिंग हुआ बस। फिर एयरपोर्ट से जब इधर लेके आए अहमदाबाद, फिर वो फ्लाइट कैंसिल होगी वेदर की वजह से, फिर दूसरा फ्लाइट रिजर्व किया, फिर वहां से अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से इधर, फिर वापस ब्लीडिंग। फिर जब से शांतिवन में आई, फिर परसों 2-3 पहले, उसके बाद में कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुआ, पर उसने मतलब मोशन भी पास नहीं हुआ है, तो बताना मुश्किल है होगा नहीं होगा, पर कल रात को नॉर्मल हुआ चूल पास, मतलब ब्लीडिंग कल रुक गया। तो परसों हमने एक खून चढ़ाया, यहाँ आने के बाद तुरंत रात में एक खून चढ़ाया, उसके दूसरे दिन एक खून चढ़ाया, कल एक खून चढ़ाया, आज सुबह में जाके एक खून चढ़ाया। तो ये जो लाइन था सेंटर लाइन दादी बस ऑडियो भेजा मुझे कि उसको आके निकालो, मुझे पूरा बंधन मुक्त होना है, क्योंकि अभी कोई भी ब्लीडिंग नहीं, मतलब डॉक्टर ने जो कुछ कोशिश किया उधर वो सब एक तरफ रह गया, और ब्लीडिंग अपने आप रुका अभी। और अभी एकदम हम मधुबन के 6 भाई आए थे, उन्होंने भी ब्लड दिया, तो ब्लड का भी मतलब टोटल उधर 4 ब्लड, इधर एक, टोटल 8 बोतल। तो अभी तो एकदम, आज तो मुझे सुबह से बुला रही थी, आओ आओ कब आ रहे हो, कब आ रहे हो निकालने के लिए आज सेंटर लाइन निकाल दिया, इतनी खुश आज, मतलब मुझे डॉक्टर के साथ डांस करना है, तो मेरे साथ डांस किया इसमें एक दिखाता हूँ